السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، كاف ها يا عين صاد، صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المعظم الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم. میرے دوستوں، بھائیوں اور ماں بہنوں، آپ بغدادی قاعدہ پڑھتے ہیں یا پڑھ چکے ہیں؟ جانتے ہیں بغدادی قاعدہ، جس میں الف با تا سا جیم ہا خا یہاں سے لے کر ایا تک لکھا رہتا ہے؟ اعلی حضرت امام اہل سنت جب بغدادی قاعدہ کا پہلا پیج پڑھ رہے تھے تو ہر ہر حرف پر ان کے عشق میں ایک تموج اور لہر پیدا ہوتی تھی، اور اپنے اشعار میں ان حروف کے ذریعے اپنے محبوب مدنی تاجدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نعت عرض کی. ابھی میرے عزیز مولانا غلام مصطفیٰ نے مجھے اس بات کی طرف متوجہ کیا کہ آپ اعلی حضرت کے شعر کی تشریح کریں، وقت زیادہ ہو گیا ہے. اعلی حضرت فرماتے ہیں، گے سو قد لام الف کر دو بلا منصرف، لا کے تہے تیرے لا تم پہ کروڑوں درود. اب دیکھیے اعلی حضرت کا کمال، فرماتے ہیں گے سو قد لام الف، گیسو زلف کو کہتے. جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زلف مبارک کو سنوارتے تھے تو لمبی لمبی زلفیں ادھر کان تک اور کان سے نیچے، جب کنگھی کر لیتے تو تھوڑی دیر کے بعد یہ زلفیں دونوں کان کے ارد گرد ایسے ٹیڑھی ہو جاتی تھی. اب آپ بغدادی قاعدہ میں لام دیکھیں، اس کا ماڈل اور شکل یہ ہے، اوپر سے سیدھا ہوتا ہے اور نیچے ایسے گول بن جاتا ہے. یہ ہے حضور کی زلف مبارک کی شکل، اوپر سے بال سیدھے آئے اور نیچے سے ایسے مڑ گئے، لام بن گیا. اسی طرح کاف، کاف نہیں بول رہا ہوں، کاف، چھوٹی کاف جب آپ لکھیں گے تو اس کی شکل ہے اوپر سے نیچے سیدھے اور نیچے آ کر یوں مڑ جاتا ہے. لام اور کاف اوپر سے سیدھے اور نیچے آ کر مڑ گئے، आला हजरत ने ये दोनों हर्फ अपनी निगाह के सामने रखा और सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुड़े हुए जुल्फों को देखा तो पुकार उठे गेसुओ कद लाम अलिफ, हाँ काफ इसमें नहीं है, गेसुओ कद लाम अलिफ, आपका गेसु लाम की तरह है और कद जो है सीधा ये अलिफ की तरह है। आप खड़े होंगे तो जैसे अलिफ खड़ा सीधा होता है और लाम ऊपर से सीधा और नीचे से मुड़ा हुआ होता है कि यहां से आया और यहां से मुड़ गया। आला हजरत फरमाते हैं या रसूल अल्लाह आपका कद अलिफ की तरह सीधा है और गेसु लाम की तरह खमदार है। ये दो बातें जहन में रखें। अब बगदादी कायदा आप पढ़िए, सब हर्फ अलग अलग हैं, कोई हर्फ मिला हुआ नहीं है। अलिफ अलग है, बा अलग है, ता अलग है, लेकिन इन अलग अलग हरूफ में एक जगह आप पढ़ेंगे लाम अलिफ, लाम को अलिफ के साथ मिला दिया गया। और जब लाम अलिफ लिखा जाता है तो उसकी दो शक्ल होती है, एक तो यूं लिखा और उसमें ये मिला दिया, ये लाम और ये अलिफ, और दूसरी शक्ल ये है यूं लेकर आए और यूं घुमा दिया। दोनों शक्लों पर अगर आप बगदादी कायदा में गौर करेंगे तो ऐसा लगता है कि ये दो तलवार है जो मिला दी गई, यूं ये दो तलवार मिली होगी और ये ला बन गया। ला का अरबी माना है नहीं, तलवार का काम और ला का माना, इन दोनों में बड़ी मुनासिबत है। तलवार क्या करती है, जो है उसको मौत के घाट उतारती है। लोग बोलते हैं नहीं रहा, जब तक जिंदा है कहते हैं है, और कत्ल हो गया तलवार ने उसका सर उड़ा दिया तो अब वो नहीं बन गया। ला का काम नहीं है और तलवार का काम भी नहीं, तो इरशाद फरमाते हैं या रसूल अल्लाह आपका कदे मुबारक अलिफ की तरह है और गेसु लाम की तरह है। गेसु वो कद लाम अलिफ, कर दो बला मुंसरिफ, हम उम्मत पर बलाएं आ गई हैं, या रसूल अल्लाह हमारी बलाओं को भगा दीजिए, फेर दीजिए। अगर कोई शरारत पसंद आपको सताने वाला है और आप तलवार लेकर दौड़ेंगे तो भागेगा कि नहीं भागेगा। या रसूल अल्लाह आपके पास तो लाम अलिफ की तलवार है, हमारे बलाओं को भगा दीजिए। किस तरह, ला के तरह तेरे ला, हमारी बलाओं को ला की तलवार के नीचे रखकर या रसूल अल्लाह उसे खत्म कर दीजिए, नेस्त और नाबूद कर दीजिए। ये कमाल इमाम अहमद रजा का है कि हरूफ हिजा से भी नाते मुस्तफा का वो अंदाज अख्तियार किया कि समझने वाले समझने से कासिर हैं। गेस वो कदला मलिफ, कर दो मला मुनशरिफ, ला के तहे तेजे ला, तुम पे करोड़ों दुरू। और एक शेर ये है, काफ गेसु हादहन या अबरू, आंखें ऐन सा। फरमाते हैं काफ गेसु, एक जगह कहा गेसु लाम की तरह और एक जगह फरमाया गेसु काफ की तरह। हदीस में शमाइल रसूल ने ये लिखा है कि हुजूर की जुल्फें दो तरह मुड़ती थी, एक तो नीचे बिल्कुल गोल और कभी ऐसा होता ऊपर से नीचे आती और यूं मुड़ जाती। आला हजरत फरमाते हैं आपके गेसु काफ की तरह है, काफ गेसु हा देहन, छोटी हा ऐसे लिखी जाती है। फरमाते ये आपका मुंह मुबारक जो है ये हा है, काफ गेसु हा देहन, या अबरू आंखें ऐन साथ, और या जो लिखी जाती है यूं लिखी जाती है। अबरू को भी आप देखो एक या ऐसे लिखी जाती है और एक या ऐसे लिखी जाती है। ये जो ऊपर का मरकज होता है ये वो अबरू की तरह है और नीचे का मुड़ा हुआ हिस्सा ये दूसरी अबरू की तरह है। फरमाते हैं काफ गेसु हा देहन या अबरू आंखें ऐन साद। अब साद आप लिखिए ऐन लिखिए तो ऐन लिख करके यूं आप घुमा देते हैं, एक आंख ये हो गई, और साद लिख करके यूं घुमा देते हैं दूसरी आंख ये हो गई। काफ घेसु हा देहन या अबरू आंखें ऐन साद साबित हो गया, काफ हा या ऐन साद उनका है चेहरा नूर का। काफ हा या ऐन साद उनका है चेहरा नूर का। ये हक है इमाम अहमद रज़ा का और ये रोशनी में सब नजर आता, अंधेरे में नजर नहीं आता। अंधेरा जब होता है तो बाप को वो बाप नहीं समझता, साला है साले को समझता नहीं। अंधेरे में कोई समझ में नहीं आता कौन खड़ा, अगर साले बाप खड़ा है और भीड़ भाड़ में बेटे को धक्का लग गई और बेटा जरा गुंडा टाइप का है तो क्या कहेगा, कौन है वे साले। बाप से टच हो गया, धक्का लग गया और मुंह से क्या निकला, साले। साला किसको कहते हैं,
चोरुका भाई।
अरे बीवी के भाई को साला कहते हैं, लोग बोलते भी नहीं। अरे आपकी औरत मारेगी नहीं भाई। बाप का रिश्ता और साले का रिश्ता दोनों में कितना डिफरेंस है। साले का रिश्ता हंसी मजाक वाला और बाप का रिश्ता अदबो एहतराम वाला। अंधेरे होने की वजह से इस बच्चे ने मुंह से बाप को साला कह दिया। अगर उजाला होता तो ऐसी गलती करता, देख लेता कि अब्बा से मेरा बदन टकरा गया है तो वो माफी मांगता, लेकिन अंधेरे में रिश्ता आदमी भूल जाता, कुछ समझ में नहीं आती। ऐ लोगों इसी तरह अगर ईमान का नूर दिल में भरा हुआ है तो कोई उम्मती नबी को अपने जैसा नहीं कह सकता, और जो नबी को अपने जैसा कह रहा है मतलब ये है ये अंधेरे में है। हम अंधेरे वालों को दावत देते हैं कि उजाला कर लो, रोशनी कर लो, हर एक का मर्तबा समझ में आएगा, हर एक का रिश्ता समझ में आएगा। और उजाला कैसे होता है, आजकल उजाले के लिए अंधेरा भगाने के लिए इलेक्ट्रिक फिटिंग करानी पड़ती है। अब इलेक्ट्रिक फिटिंग आप कराएंगे तो आप सब जानते हैं दो वायर का इस्तेमाल करना पड़ता है, एक वायर की फिटिंग से कभी अंधेरा दूर नहीं होगा। जब तक कि दो वायर इलेक्ट्रीशियन आपके घर में न फिट करे, एक वायर को कहते हैं फ्यूज, और दूसरे वायर को कहते हैं
न्यूट्रल।
व्हाट इज फेस? फेस क्या है? पावर हाउस में जो करंट पैदा हुआ है वो जिस तार में घूम फिर रहा है, जिसमें करंट है उसको फेस कहते हैं, और जिसमें करंट नहीं है उसको न्यूट्रल कहते हैं। आपने देखा होगा इलेक्ट्रीशियन कभी कंफ्यूज हो जाता है कि इसमें फेस कौन सा है और न्यूट्रल कौन सा है, तो उसकी जेब में एक छोटा सा टेस्टर रहता है, वो फौरन निकालता है और खुले हुए वायर पर यू टच कर देता है, और उस टेस्टर के पीछे एक छोटा सा बल्ब होता है। अगर वो फेस है तो ये बल्ब फौरन जल जाता है, वो समझ जाता है फेस है, और अगर न्यूट्रल पर लगाएगा तो वो पीछे वाला छोटा सा नन्ना मुन्ना जो बल्ब है वो जलता नहीं। इलेक्ट्रीशियन फौरन फैसला कर लेगा ये न्यूट्रल है। ये फेस और न्यूट्रल इन दोनों की फिटिंग करोगे जब ही अंधेरा दूर होगा रोशनी आएगी। यही तो होता है। एक तो बात ये है कि जब फेस ही में करंट है तो उसी की फिटिंग करो, न्यूट्रल को छोड़ दो, और दिन भर स्विच पर बटन पर हाथ नीचे ऊपर करते रहो, आपके अंधेरे कमरे में रोशनी आएगी
नहीं।
अरे जिसमें करंट है वो आपको करंट क्यों नहीं दे रहा? और अगर आपने छू दिया तो झटके देके मारेगा, हद बदतमीज। न्यूट्रल को छोड़ करके मुझको छेड़ता, छोड़ेगा नहीं, कहेगा कम हेयर नहीं दिया, चिपका लेगा और खोपड़ी ऐसी रह जाएगी कर रहे। इतना खतरनाक होता है। न्यूट्रल को छोड़ा उसको छेड़ रहा है, जान नहीं बचेगी, सारा करंट उसी में है, लेकिन घर में अंधेरा क्यों है? जान तो ले रहा है, रोशनी नहीं पैदा कर रहा है। अगर उस फेस वायर को अल्लाह जबान दे दे और आप जाके पूछो, ए फेस तेरे कलेजे में सारा नूर है, सारा करंट है, मैंने अपने एयर कंडीशन बंगले में तुझे बड़े प्यार से फिट कर दिया है, मेरा बल्ब क्यों नहीं जलता? वो कहेगा, अबे बेवकूफ, अकल के औंधे, दिमाग के कोढ़ी, मेरे नूर से रोशनी वही हासिल करेगा जो न्यूट्रल का वसीला पकड़ ले। बगैर न्यूट्रल के वसीले के खतरा तो हासिल हो सकता है, नूर नहीं मिल सकता। छुओगे तो मैं पूरे तुम्हारे खून को चूस लूंगा, मेरे पास इतना पावर है। और रोशनी लेना है तो न्यूट्रल को साथ में रख लो, ये न्यूट्रल साथ रहेगा, पूरा कमरा क्या पूरा सूरज जगमगा रहा है। तो रोशनी अंधेरे वाले रोशनी में आना चाहते हैं तो दोनों वायरों को जोड़ना पड़ेगा, लेकिन कैसे जोड़ेंगे? दोनों को एक साथ मिलाकर मत जोड़ना, वरना स्पार्क हो जाएगा, मेन फ्यूज उड़ जाएगा। दोनों साथ रखना, लेकिन दोनों की क्लिप और दोनों का स्क्रू अलग अलग रहता है, जरा भी एक बाल भी टच मत होने देना। इसका स्क्रू यहां टाइट कर देना और वहीं पर दूसरा स्क्रू है उसमें न्यूट्रल को लगा देना, और देखना कि दोनों बारीक बाल तो एक दूसरे से सटे हुए नहीं है, अगर है तो फौरन उसको हटा, सटाना मत, ये भी खतरनाक है। तो आप कहेंगे जब सटाना खतरनाक है तो हम हटा देते हैं, सटाना भी खतरनाक, हटाना भी खतरनाक, अगर सटा दिया तो स्पार्क होकर फ्यूज हो जाएगा, हटा दिया कमरा अंधेरा हो जाएगा। तो आप बोलेंगे न मैं हटाऊंगा न सटाऊंगा, थोड़ा सा काट के घटा दूंगा। घटाना भी मत, साथ छूट जाएगा दोनों। तीन काम से तुमको बचना है, समझ रहे हो कि नहीं? सटाना मत, हटाना मत, घटाना मत। फिर क्या करेंगे? साथ साथ रखना। अगर सटा दिया तब भी इस पार्क और घर में आग लग सकती है, हटा दिया रोशनी खत्म, घटा दिया तब भी अंधेरा। इस्लाम में तीन किस्म के फिरते हैं। एक वो जो सटा देते हैं, अल्लाह और रसूल को एक कहते हैं, ऐसे पीरों से दूर रहना ये शिर्क है। सटाया तो शिर्क और हटाया तो काफिर और घटाया तो मुनाफिक। न सटाना न हटाना न घटाना। अल्लाह के रसूल को कलमे के साथ रहने देना, ला इलाहा इल्लल्लाह, साथ में मोहम्मद और रसूलुल्लाह, हटाना मत काफिर हो जाओ। और नबी की इज्जत घटाना मत, चड्डे बन जाओगे, समझे? मुनाफिक बन जाओगे। रोशनी लेना है तो मसलके आला हजरत को ध्यान में रखना। आला हजरत फरमाते हैं सटाना भी नहीं, हटाना भी नहीं, नबी की शान घटाना भी नहीं। इन तीनों से बच जाओ तो जगमगाते रहना, रोशनी मिल जाएगी, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। आज आप देख रहे हैं पूरा सूरज चमक रहा। मेरे नवासे ने जो शेर पढ़ा है कि जल कर भी जलने वाले भी जल कर अंधेरे में हैं, जलने वाले जो इसको देख करके जलते हैं ना, ये जलता है तो उजाला होता है, और कुछ लोग जलते हैं तो इधर अंधेरा हो जाता है। जलने वाले भी जलकर अंधेरे में हैं, अहले सुन्नत के घर नूर ही नूर। यहाँ बल्ब जलता है वहां दिल जलता है, जहां दिल जलेगा अंधेरा होगा, और जहां मोहब्बत का चिराग जलेगा उजाला ही उजाला होगा। तो मैंने अपने शेर में इसीलिए कहा है जलने वाले भी जलकर अंधेरे में हैं, अहले सुन्नत के घर नूर ही नूर है। तो रोशनी हासिल करना है तो कनेक्शन लेना पड़ेगा। और आप कहेंगे आपने मिसालों से समझाया है, इसका कहीं इस्लाम में सबूत भी है? हाँ, इस्लाम में सबूत है। कुरान खोलो तो सबसे पहले ये आयत नजर आएगी, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तमाम खूबियां रब्बुल आलमीन के लिए, सारी कायनात का रब अल्लाह ताला, अल्लाह रब्बुल आलमीन, सारा नूर उसी का है, असली नूर वही है। जैसे मैंने मिसाल दी असली तार जिसमें फेस है, सारा नूर नबी का नूर भी अल्लाह का नूर है, नबूवत का नूर भी अल्लाह का नूर है, ولایت کا نور بھی اللہ کا نور ہے, ایمان کا نور اللہ کا نور ہے. قرآن فرماتا ہے اللہ نور السماوات والارض, اللہ تعالی زمین و آسمان کا نور ہے. اس کی تفسیر یہ ہے نور بمانے منور, ساری کائنات کو جو روشنی ملی ہے چمکانے والا صرف اللہ تعالی ہے. جب اللہ تعالی ہی کا نور ہر کائنات کے ذرے ذرے میں ہے تو نبی کی کیا ضرورت ہے؟ رب فرماتا ہے ضرورت سن لو, وما ارسلناك الا رحمة للعالمين. اے حبیب آپ سارے عالم کے ذرے ذرے کے لیے رحمت ہیں. رب کائنات کے ذرے ذرے کے لیے رب ہے, رب العالمین, تو اس نے اپنے حبیب کو بنایا ہے رحمت للعالمین. رب کے نور کو اور رب کی رب کے جلال کو اگر تم حاصل کرنا چاہتے ہو تو مصطفیٰ کا جمال ساتھ میں رکھو. انہیں ہٹایا تب بھی تمہارے لیے دابک کوئیاں کھیلنے میں شرک کا بھوت تمہارے اوپر سوار ہو جائے گا, کفر کے اندھیرے میں بھٹکتے رہو گے. اس لیے کہ جہاں جہاں رب کی ربوبیت ہے وہاں وہاں مصطفیٰ کی رحمت بھی ہے. اللہ کی ربوبیت بغیر رحمت کے حاصل نہیں ہو سکتی. اسی لیے اللہ تعالی نے جن جن لوگوں کو اور جن جن چیزوں کو پرورش کرنے کا جذبہ دیا ہے ان کے دل میں رحمت بھی پیدا کر دی. ماں کو بیٹے کی پرورش کا ذمہ دار بھی بنایا ہے, تو ماں کو پرورش کرنا اسی وقت آئے گا جبکہ ماں کے دل میں رحم و مروت کے جذبات بھی. ابھی نہیں سمجھے آپ, سمجھ گئے ایک مثال سن لو. سورت میں تو مرغی والے بہت کم ہوں گے, ہے؟ ارے وہ مرغی نہیں جو بغیر مرغے کے انڈا دیتی. میں اس مرغی کو کہتا ہوں جو دیسی مرغی. اس مرغی کو انڈا دیتے دیتے جب دن پورے ہو جاتے ہیں تو وہ پھر تلاش کرتی ہے کہ میرا انڈا میرے حوالے کر دو. گھر والے ایک برتن میں انڈا رکھ کر اس پر مرغی کو بٹھا دیتے. 21 یا 22 دن میں اس انڈے کے اندر سے چوزے نکلتے ہیں. یہ اللہ کی قدرت تو دیکھو. انڈے میں کوئی جان نہیں ہے, مردہ جیسے ہے, لیکن رب کی قدرت دیکھو کہ مردے سے زندے کو نکالتا ہے اور مرغی زندہ ہے, اس زندے کے پیٹ سے انڈا مردہ نکالتا. قرآن فرماتا یخرج الحی من المیت, اللہ تعالی زندے کو زندے سے مردے کو نکالتا ہے, مرغی سے انڈے کو نکالتا ہے اور مردے کو مردے سے زندے کو نکالتا ہے. جب مرغی کا بچہ پیدا ہو جاتا ہے, اب دیکھو اس بچے کی پرورش کا ذمہ دار اللہ تعالی نے مرغے کو نہیں بنایا. وہ تو ادھر ادھر آوارہ گھومتا, کوکڑو کو کوکڑو کو کرتا رہتا ہے. بچے کی پرورش کی ذمہ داری اللہ نے مرغی کے اوپر رکھی. جس دن یہ چوزے نکلتے ہیں, خدا کی قسم ماں کا ننا دل دیکھو, خود نہیں کھاتی ہے انہیں کھلاتی. آپ کبھی دیکھیں گے اگر ایک چاول کا دانا زمین پر مرغی دیکھتی ہے تو اسے چونچ میں لیتی ہے اور پھر ایک عجیب قسم کی آواز نکالتی, کو 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 کو. सारे बच्चे माँ की आवाज को समझते हैं और उसकी आवाज पर सब पर फैला करके दौड़ते हैं। जब उसकी औलाद सब जमा होती है तो वो अपने चोंच का पकड़ा हुआ चावल जमीन पर छोड़ती है, जो जिसके नसीब का है बेटे खा ले। भूखी मुर्गी खुदा की कसम बच्चों को खिलाती है और बच्चों को खिलाकर वो अपने को पुरसुकून महसूस करती है और बच्चा खा लेते हैं तो फिर दूसरा चावल फेंकती है। ये क्या है? ये परवरिश करने का जिम्मेदार अल्लाह ने उसे बनाया है तो उसके दिल में रहम करने का जज्बा भी डाल दिया। मुर्गी बिल्ली से बहुत भागती है, डरती है। जहां कहीं बिल्ली आई तो मुर्गी भाग पड़ी, लेकिन जब वो मां बन जाती है और मुर्गी को चील को या कौवे को आते हुए देखती है तो ये गर्दन के पर ऐसे फैला लेती है और अपने पंख फैला करके उन पर हमला करती है। माँ बच्चों को बचाने के लिए अपनी जान नछावर करती है। ये वो रहम का जज्बा है जो एक परवरिश करने वाले के दिल में रब ने पैदा कर दिया। पहले रुबूबियत का जज्बा पैदा फरमाता है और उसके रुबूबियत का जिम्मेदार करार देता है, फिर उसके दिल में रहम का जज्बा पैदा करता है। ये सारी कायनात रब की रुबूबियत में परवरिश पा रहे हैं और रब ने समझा दिया मेरी परवरिश तुमको इसलिए फायदा दे रही है कि मेरे रसूल की रहमत सारी कायनात को घेरे हुए है। मैं रब्बुल आलमीन हूं तो मेरा हबीब रहमतुल लिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ये है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसलिए हमारा साथ होना फर्ज और वाजिब है कि अल्लाह रहम रब है और जब अल्लाह रहम रब है तो हुजूर का जमाल रहमत उस जात के साथ जहां जहां रुबूबियत अपना काम कर रही है मुस्तफा की रहमत और उनका जमाल वहां वसीला बन करके आ रहा है। इसलिए हमारी देहाती जुबान में कहते हैं फेस को गर्म तार कहते हैं और न्यूट्रल को ठंडा तार कहते हैं। रब की रुबूबियत जलाल वाली है और मुस्तफा की जात रहमत वाली है। ये गर्म और ठंडा, ये जलाल और जमाल का जब कम्बिनेशन होता है तो ये हमारा वजूद इस दुनिया में चलने के लायक है। नबी की सीरत का एक खुला हुआ बाब है कि आपका वजूद गिरामी पूरी कायनात के कायम रहने का सबब है। आला हजरत इसी सीरत को बयान फरमा रहे हैं, है उन्हीं के दम कदम से बाग आलम ने बहार, वो न थे आलम न था अगर वो न हो आलम नहीं। ये उनके जमाल का ये कमाल है कि सारा वजूद आज हमको नजर आ रहा है। सुनो, हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब जन्नत में रह रहे थे और जन्नत में कोई इंसानी शक्ल का नहीं था, तन्हाई महसूस कर रहे थे, अलीमुम बिजाति सुदूर मौला ने हजरत आदम की तन्हाई को खत्म करने के लिए हजरत हव्वा को पैदा किया। पहले मर्द फिर औरत, औरत और मर्द जब दोनों जन्नत में पैदा हो गए, अल्लाह ताला ने खास हजरत हव्वा को हजरत आदम के ही लिए पैदा किया था। हजरत आदम ने पहली नजर में हजरत हव्वा को देखा तो बड़े मसरूर हुए और चाहा कि मैं हव्वा से मुलाकात करूं। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मना कर दिया कि ए आदम, अभी अपनी बीवी से तुम नहीं मिल सकते। तय हो गया था कि शादी होगी, रब ने मना किया। आज हमारे मुआशरे में एक रस्म है, मंगनी हुई तय हुआ तो अभी निकाह नहीं हुआ है, मिलना जुलना शुरू। ये कहां का रस्म है, कहां की रस्म है, ये कहां का तरीका है? जन्नत में जो रस्म है वही रस्म हमारे लिए, समाज के लिए नूर अला नूर है। रब ने निकाह से पहले आदम और हव्वा को मिलने से मना कर दिया। ऐ मुसलमानों, जिस कौम में ये रस्म है, इस रस्म को बहुत जल्दी खत्म करना अल्लाह की मर्जी के खिलाफ है। न मोबाइल से बात करना, न जाकर के ससुराल में टांग फैलाकर सोना, न बीवी के गले में हाथ डालकर पिकनिक मनाने जाना। अभी तेरी बीवी नहीं है, जन्नत में कोई खतरा नहीं था, रब ने मना कर दिया, मिलना मत। यहाँ तो खतरे ही खतरा है, क्या करेगा किसी को नहीं मालूम। ये माँ बाप की जिम्मेदारी को मैं ललकार रहा हूँ, अपने बेटे और बेटियों को जहन्नम का रास्ता मत बताओ, वो तरीका बताओ जो जन्नत में ले जाए और आदम और हव्वा की मंगनी का जहां नूर नजर आए। हजरत आदम को मना कर दिया था, मिलना मत, नहीं मिले, निकाह हो गए। हजरत आदम ने चाहा अब मिलूं, रब ने फरमाया आदम अभी रुको, पहले अपनी बीवी का महर अदा करो। हजरत आदम ने पूछा या अल्लाह मेरी बीवी का महर क्या है? क्यों पूछा? वहां तो न रुपया था, न डॉलर था, और न ये 2000 का गुलाबी नोट था, और न 50 रुपये का ग्रीन नोट था। आज नोट भी छोटे छोटे हो गए, पहले इतने बड़े बड़े होते थे, सब साइज बिगड़ गए। पुराना नोट और नया नोट, पहले व्यापारी एक एक साइज करके और गड्डी बांध बांध के रखता था, अब तो 50 का इतना बड़ा और आज के जमाने में ये डिच्चू, दोनों 50 के साइज बिगड़ गए, हमारी गड्डी नहीं बन पाती। ये मसला अपनी जगह पर, आज सबका साइज बिगड़ा हुआ है, किस किस के साइज को तुम बनाओगे? तो उस जमाने में रुपया भी नहीं था, पाउंड भी नहीं था, डॉलर भी नहीं था, यूरो भी नहीं था, बंगाल का टका भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। जन्नत में हजरत आदम ने पूछा मौला क्या महर अदा करूं, तो रब ने फरमाया आदम आखिर जमाने में तुम्हारी नस्ल से मैं एक नबी भेजूंगा जिनका नाम मोहम्मद और अहमद होगा, उन पर सलातो सलाम पढ़ो। हजरत आदम खड़े हुए और 3 मरतबा हजरत मौलाना अब्दुल हक मुहक्किक देहलवी फरमाते 3 मरतबा या 13 मरतबा या 17 मरतबा और एक रिवायत में 21 मरतबा हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने हुजूर पर सलातो सलाम निकाह के बाद पढ़ा। आज तुम अपने निकाह में सलातो सलाम पढ़ते पढ़वाते हो? अगर पढ़ दिया किसी ने तो कितने चड्डे वहां रहते हैं, नया कहा ये बरेली सभी करते हैं। ये हाल है, मैं चैलेंज करता हूं निकाह के बाद दुरूद व सलाम पढ़ना, इतनी पुरानी रस्म है, इतनी पुरानी रस्म है कि इससे पुरानी रस्म कोई हो नहीं सकती। और ये रस्म जन्नती रस्म है, याद रखना। और जो लोग बोलते नई रस्म है, हम बोलते जन्नती रस्म है, अपने घर की रस्म कौन जानता है? बोलो, घर वाले जानते हैं। और जो घर में कभी रहा ही नहीं है, बाहर ही बाहर खेलता, वो हमारे घर की रस्म क्यों जाए, कैसे जान सके। एक तो गया था कुछ दिन के लिए, वो भी निकाल दिया, और जो कभी गए नहीं है वो उसको नई रस्म कहते हैं और हम उसको पुरानी रस्म कहते हैं, इसलिए कि हम उस जात पर यकीन रखते हैं जो जन्नत में आते जाते रहे। जनाबे मुस्तफा प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको बताया कि ये जन्नत की रस्म, इसलिए हम जन्नती हैं और जन्नती रस्म को हम आज भी कलेजे से लगाए हुए हैं। मैं तो जहां भी निकाह पढ़ाने जाता हूं तो हमारे असिस्टेंट पीए सेक्रेटरी मौलाना गुलाम मुस्तफा साहब, मैं कहूं ना कहूं, शादी ब्याह वाले उसको पसंद करें ना करें, ये पट्टा माई पकड़ता है मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों साल। जन्नती रस्म को ऐ सुन्नियों हर निकाह में जारी करो, करोगे? अगर काजी साहब मुस्तफा जाने रहमत या नबी सलाम अलैका नहीं पढ़ना जानते हैं, आज तो हर सुन्नी नौजवान को एक दो शेर तो याद ही है, खड़े हो जाओ जन्नती रस्म निकाह के बाद जारी करो। मेरा दावा है ये रस्म जारी करोगे तो हजरत आदम और हव्वा रजी अल्लाह ताला अन्हो अन्हा और अलैहि सलातो वस्सलाम के निकाह की बरकत और उसका नूर तुम्हारे बाल बच्चों के निकाह में शामिल हो जाए और शैतान की दसीसाकारी से तुम्हारा समाज महफूज हो जाएगा। मेरे भाइयों, ये जन्नती रस्म है, इसे भुलाओ मत। ये मैंने कहा, असल में मुझे ये बताना था कि अगर हजरत आदम अलैहिस्सलाम अपना महर सलातो सलाम पढ़कर अदा न करते बफर्ज़े मुहान, तो अल्लाह ताला आदम और हव्वा को मिलने नहीं देता, समझ गए? मना कर दिया था, महर अदा करो फिर मिलना। अगर आदम और हव्वा न मिलते, न महर अदा करते हजरत आदम, तो अल्लाह मिलने नहीं देता, और जब मियां बीवी मिलते नहीं तो न अरे होता, न गैरे होता, न तुम होते, न हम होते, न इल्ला होता, न चिल्ला होता, न पिल्ला होता, कुछ भी नहीं होता। है उन्हीं के दम कदम से बागे आलम में बहार, वो न थे आलम न था, अगर वो न हो आदम नहीं, ये दरूद व सलाम का एहसान है पूरी मानव जाति पर। नबी को माने न माने उस पर भी मेरे नबी के दरूद व सलाम का एहसान है कि तुम माँ के पेट में आए और पेट से तुम बाहर आकर के जमीन पर खुदा की चल फिर गए।
नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर अशरफुल फकहा,
ये हुजूर का एहसान है। तो वो न्यूट्रल को छोड़ोगे तो तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। आप अल्लाह के नूर से फायदा हासिल करना चाहते हैं तो मुस्तफा का कुर्ब और वसीला ले लो। कुरान फरमाता है वब्तगू इलैहिल वसीला, जब खुदा की बरकतों और रहमतों को हासिल करना चाहते हो तो ऐ मेरे मानने वालों, उसकी तरफ तवज्जो करो, उसकी तरफ चलो, तो पहले किसी मजबूत वसीले को हाथ में ले लो। बगैर वसीले के मत जाना, वसीला होगा कुर्बे इलाही होगा, वसीला छोड़ोगे तो फसीला हो जाएगा, जुदाई हो जाएगी। ये सीरतुल नबी का वो बाब है कि काय के चर्रे चर्रे से वाबस्ता। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद दिल को नूर देता है, कब्र को रोशन करता है, हश्र में शफाअत का सबब बनेगा। या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, हमारी इस मजमे को कबूल फरमा ले। हर तारीख दिल में अपनी मारिफत का नूर और अपने हबीब की महब्बत का शुऊर पैदा फरमा दे। तमाम सुनने वालों को ईद मुबारक हो, ईद उल नबी, ईद मिलाद उल नबी मुबारक हो। इस पर भी लोग एतराज करते हैं, दो ही ईद थी, तीसरी ईद कहां से आई? अरे ये तो ईद पर ईद की ईद है, अगर ये ईद न होती ना, ये सलात व सलाम न होता, सबकी ईद निकल जाती। एक ईद भी नहीं आती, ये ईद ही जाने ईद है, यही ईद बुनियाद ईद है, यही ईद हर ईद की ईद है। हम तो ईद मनाएंगे और इस शान से मनाएंगे कि हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम। हश्र तक, मैं वो सुन्नी हूँ जमील कादरी, मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु वस्सलाम। क्या कहते हो, सुन्नियों की कब्र में जाने के बाद भी नबी पर सलातो सलाम पड़ेगा, नबी को देखेगा, खड़ा हो जाएगा, कहेगा सलातो सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। इसलिए कि हम पहचानेंगे, ये आंख नहीं पहचानती नबी को, दिल पहचानता है। दिल में जो आंख है, नबी को 1500 साल हो गए, हमने नहीं देखा है, लेकिन कब्र में अंधेरा नहीं होगा, मुस्तफा के जलवे पाक का ऐसा उजाला होगा। आला हजरत फरमाते हैं, कब्र में लहराएंगे का हश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह के। हमारी कब्र में उजाला होगा, नूर होगा, इसीलिए तो हम पहचानेंगे। जैसे सरकार नजर आएंगे, पुकार उठेगा सुन्नी मचल करके, हाजा नबीयुना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये मेरे आका मौला मदनी ताजदार जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हुजूर फरमाते हैं सही हदीस है बुखारी शरीफ की, मुनाफिक जो होगा वो कहेगा है हा है हाथ लादरी लादरी है हाथ, मैं जानता नहीं कि कौन है, अंधेरे में क्या जानेगा मैं, यहाँ भी अंधेरा वहाँ भी अंधेरा, और ये जाएगा लुटेरा, न इधर का न उधर, बीच में का पिंडोलम लटकर कर लटकता रहेगा। ऐ मेरे सुन्नियों, यहाँ भी तुम्हारा तुम्हारी गली रोशन, तुम्हारा घर रोशन, तुम्हारा दिल रोशन, और तुम्हारी कब्र भी रोशन होगी। ऐसे सुन्नी बनकर के जियो, रब्बुल आलमीन तुम्हें सुन्नियत पर कायम रखे। लेना इल्ल बला
या नबी सलाम अलैहि।